ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत अभी ये दूसरा सत्र है जिसमें राजयोग का मुख्य आधार क्या है। योग माना ही जोड़, संबंध जोड़ना, परंतु ये सर्वश्रेष्ठ संबंध होने कारण इसको राजयोग कहा। आत्मा का पिता परमात्मा के साथ, जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक फिर भी दुनिया में एक ही मत है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे उसको किसी ने शक्ति कहा, रूह कहा, सोल कहा, आत्मा कहा, जो भी कहा, परंतु है उस चैतन्य शक्ति की ओर इशारा। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज दुनिया में अनेक मत मतांतर हो गए और ईश्वर के बारे में इतनी सारी मतें हो गई कि आखिर भी वो सत्य क्या है समझ ही नहीं पाए। ईश्वर को मानते हैं परंतु जानते नहीं। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का बेटा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास उसको लेके गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भगवान बचाए, इसके उसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त होने कारण उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी। दिन रात श्री कृष्ण की पूजा करता रहा। दो दिन बीत गए। वहां एक पड़ोसी आकर उसको कहने लगा, अरे तू कब से श्री कृष्ण को याद कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण को थोड़ी पुकारा जाता। उसने कहा, फिर घर ऐसे समय में मां को पुकारना चाहिए, मां का हृदय करुणा वाला होता है। तू अंबे मां की पूजा कर, देख तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसको भी लगा, हाँ बात तो सही है, अंबे मां की पूजा आरंभ कर दी। दिन रात अंबे मां की पूजा करता रहा करता रहा। दो दिन बीत गए। दो दिन के बाद एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे तू कब से अंबा मां को पुकार रहा है, परंतु विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना, तू गणेश जी को याद कर, देखिए विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा, बात तो सही है, विघ्नहर्ता तो गणेश जी है। उसने गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, कह रहे कब से तू गणेश जी को याद कर रहा है, परंतु गायत्री मंत्र कर, देख चमत्कार होगा। उसको भी लगा, देखते हैं गायत्री मंत्र का चमत्कार। गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। दो दिन तक लगातार गायत्री मंत्र करता रहा। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है ना, तू हनुमान चालीसा कर, देखिए संकट टल जाएगा। उसने हनुमान चालीसा आरंभ कर दिया। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हैं, ऐसी भभूति देते हैं असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है, चलो बेटे को बाबा जी के पास लेके जाते हैं। लेके गए, भभूति खिलाए, घर आए, दो दिन हुआ, बेटा मर गया। कारण क्या हुआ? इतने भगवान को याद किया, किसी ने भी बचाया क्यों नहीं? क्या कहेंगे? हाँ, विश्वास ही नहीं था। जिसने जो कहा उसने वो कर लिया, क्या इसको विश्वास कहते हैं? क्या हमारा विश्वास भी ऐसा ही है? घर के मंदिर में या मंदिरों में सारे देवी देवताओं के फोटो रखे हुए हैं, सबको दिया बत्ती अगरबत्ती दिखा रहे हैं, जो भी सही हो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। यही विश्वास है। अगर ऐसा विश्वास है तो कहां से प्राप्ति होगी? और इसलिए आज की दुनिया में ईश्वर को लेकर के इतने मतभेद है कि कई बार लोग ईश्वर के नाम पर झगड़ा करना आरंभ कर देते हैं। तभी एक गीत बहुत अच्छा बजा, एक खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे और शायद आज हर मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति ये सारे सवाल है, क्योंकि हम मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। एक बार एक बहन मिली, उसने कहा उसका बेटा 17 साल का है। वो अपनी माँ से पूछता है, हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं? क्रिश्चियन धर्म में गॉड क्यों है? वो माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। बच्चे ने कहा, सारे भगवान नहीं हो सकता, भगवान एक होना चाहिए। और अगर ये सारे भगवान हैं, तो इन सबका हेड कौन है? परिवार में भी एक परिवार का बड़ा होता है, तो ये सब भगवानों का हेड कौन है? वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती। और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है, कोई त्योहार होता है, कोई अवसर होता है, तो कि चलो मंदिर चलो, वो बच्चा मना कर देता है। यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ, कहाँ मैं अपने मन को एकाग्र करूँ, किसमें करूँ। और इसलिए वो बच्चा कहता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मंदिर जाने के बाद आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। उससे तो मैं चर्च में न जाऊं जहां एक गॉड की तस्वीर है, तो कम से कम मैं अपने मन को एकाग्र तो कर सकूं। और इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है। माँ को बड़ा दुख होता है, मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है। लेकिन उसके पास बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं था, ये उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मैं आप सबको यही बात पूछूं कि मान लो कि कल को आपका बेटा या आपका पोता आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, या ये सब भगवान का हेड कौन है, तो क्या आपके पास जवाब है? और अगर आपने भी उसको एक संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया और उसने भी वहां मंदिर जाने से मना कर दिया, तो क्या आपको दुख होगा? इसलिए भी आवश्यकता हो गई है कि हम ये जानें, ताकि आने वाले समय में बच्चों के इस प्रश्न का जवाब दे सके। तो वो सत्य कौन है? एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था कण कण में भगवान। कहां नहीं है, सब में है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान है तो सबूत दो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी मते पढ़ने के बाद उसने क्या समझा कि सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है? क्योंकि सारी मतें एक दूसरे से विरुद्ध है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे। और ये सारा कंफ्यूजन भी क्यों है? सूत सारा मूंझा हुआ है, अब उसको सुलझाए कौन? तो वो कहानी जैसे है कि एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसा हाथी का वर्णन कर दिया। एक ने कहा पैर पकड़ के हाथी खंभे जैसा है, दूसरे ने पीठ पकड़ी तो कहा दीवार जैसा है, तीसरे ने पूंछ पकड़ी तो कहा रस्सी जैसा है, सूंड पकड़ी तो कहा सांप जैसा है, और कान पकड़े तो कहा सूप जैसा है। आखिर सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख ही नहीं पा रहे थे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, सभी सत्य है। खंभे को, दीवार को, रस्सी को, सबको जोड़ दो, हाथी बन जाएगा। हाँ, सबको मिला देने से हाथी बन जाएगा? खंभे को, दीवार को, रस्सी को, सबको जोड़ दो, हाथी बन जाएगा? बनेगा नहीं। हाथी की वास्तविकता कुछ और ही थी, है ना? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि 5 सूरदासों को कहा जाए कि एक 6ठा सूरदास दूर बैठा है, उनको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब एक एक करके जाते हैं 6ठे सूरदास के पास। पहला जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा। दूसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। तीसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा पंखे जैसा है। पांचों की बातें सुनने के बाद 6ठा सूरदास क्या समझेगा कि ये कैसा प्राणी है? हर कोई आता है अपनी बात कहता है, ऐसा कैसा विचित्र प्राणी है? लेकिन फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि इन्होंने तो महसूस किया है ना, हो सकता है ऐसा कोई प्राणी हो जो घड़ी घड़ी अपना रूप बदलता होगा, विश्वास कर लेता है। अब ये 6ठे सूरदास को कहा जाता है कि एक 7वां सूरदास और दूर बैठा है, तुमने जो समझा उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये 6ठा सूरदास जाता है 7वें सूरदास के पास और कहता है, देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन 5 ने जो महसूस किया उन्होंने जो बताया वो मैं तुझे बता रहा कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंभे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो एकदम लचीला सांप जैसा हो जाता है, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। ये सुनने के बाद 7वां सूरदास क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या कहेगा? हाँ, ये कैसा प्राणी है? और क्या कहेगा? हाँ, 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 हाथी है लेकिन कैसा है, हैं? हर कोई आता है, अलग अलग बात छठे को सुना के जाता और छठे ने कहा बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। ये सुनने के बाद सातवा सूरदास कहता है बकवास मत कर। अरे इतना तो कॉमन सेंस है कि कोई प्राणी रंग बदल सकता है लेकिन पूरा ढांचा ही बदल दे, कैसे तुमने मान लिया? कोई सबूत है? तो छठा सूरदास क्या कहते, पांच ने जो महसूस किया वो कोई गलत है थोड़ी है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो सातवां सूरदास क्या कहता है, मैं नहीं मानता हूं, सबूत दो कि पूरा ढांचा स्केलेटन ही बदल दे, हड्डियां बदल दे, ऐसा कोई प्राणी होता है क्या? थोड़ा तो तुम अपना दिमाग लगाओ। छठा सूरदास क्या कहते हैं, मुझे क्या जरूरत है दिमाग लगाने की, पांच ने तो महसूस करके देख लिया ना, कहीं हमारा हाल भी यही तो नहीं हो गया है? हाँ यही है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया। किसी ने प्रेम को महसूस किया तो कहा प्रेम ईश्वर है, किसी ने सत्य की क्वालिटी को महसूस किया तो कहा ईश्वर सत्य है या सत्य ईश्वर है, किसी ने प्रकृति से कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने कोई मनुष्य आत्मा में महसूस किया तो कहा आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया तो कहा कण कण में ईश्वर है, किसी ने कोई इष्ट देवताओं से कोई प्राप्ति कर ली कहा वही परमात्मा है, किसी ने निराकार से कुछ प्राप्ति कर ली महसूस किया तो कहा निराकार है, न नाम है न रूप है नाकार है, आखिर सत्य क्या? और वो ऋषि मुनियों ने मनुष्य को बताया, मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ऋषि मुनियों ने तो महसूस किया है ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, विश्वास कर लिया। अब वो मनुष्य आज की जेनरेशन के बच्चे को समझाने का प्रयत्न करता है कि ये सब ईश्वर है, सबके आगे माथा टेको। तो आज का बच्चा क्या कहता है, एक बात कहो, एक बात कहो, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं, कोई सबूत है? तो मनुष्य क्या कहता है, देखो ऋषि मुनियों ने महसूस किया है, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो आज का बच्चा क्या कहते हैं, हम नहीं मानते। तो क्या कहते हैं, नास्तिक है ये, नास्तिक हो गया है। अरे वो सत्य जानने का प्रयत्न कर रहा है, सत्य की तलाश में है, आप सत्य नहीं बता सकते तो नास्तिक हो गया। नास्तिक कौन है? हम नास्तिक है जो जानते ही नहीं है और बिना जाने मानते हैं, इसको क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे, जो सबके आगे माथा टेकता रहा वो आस्तिक हो गया, जिसको विश्वास ही नहीं है वो आस्तिक हो गया, क्या कहेंगे? इसीलिए कम से कम हमें जानने की आवश्यकता तो है कि आखिर सत्य क्या है। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो बताया क्या हमें उसको मान लेना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मतें हैं, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज्ड स्टेज में हैं कि हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। परंतु आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। और ये कसौटी है पांच बातें। ईश्वर किसको कहा जाए? पहली कसौटी, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन, ईश्वर एक है, है ना? तो इसीलिए जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो। उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, नहीं तो वो उनसे श्रेष्ठ हो गया। तीसरा, परमेश्वर उसको कहे जो सर्वोपरि हो। मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते, परमात्मा इन सभी चक्र से ऊपर है, है ना? सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, पाप पुण्य, सबसे ऊपर उसको कहेंगे परमेश्वर। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी ज्ञाता हो, सर्वज्ञ हो, जिसके पास संसार के आदि मध्यंत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले, और त्रिमूर्ति, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। ये तीन की महिमा उसी के साथ जाती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये पांच बातें हैं कसौटी, जिस पर एक एक मत को कसकर देखते हैं सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। पहली बात, जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? करेंगे? नहीं। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? हाँ, रचना है कहना सत्य है, बराबर। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना यह अज्ञान था, अज्ञानता के कारण कह दिया था, सत्य तो नहीं है। सत्य ये है प्रकृति परमेश्वर की रचना है। क्लियर हो गया सबको? सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बढ़े आगे। अच्छा, दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिर जाकर हमने भगवान के सामने ये क्यों गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य क्या है, हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? संतान है कहना ठीक है, तो आत्मा सो परमात्मा कहना क्या कहेंगे? आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है, अज्ञानता के कारण कहा, ये ज्ञान तो नहीं है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर जीवन में हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैं अपनी मेहनत से पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूं। इस दुनिया में मनुष्य अपनी मेहनत से पुरुषार्थ से कोई भी पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है? नहीं। पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो अपने पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि अभी वो माँ बाप हो गया। प्रॉपर्टी का जब मामला आता है ना, तो छोटे भाई बहने भी क्या कहते हैं, आप हमारे पिता समान हो इसलिए हम इज्जत करते हैं, लेकिन पिता बनने की कोशिश मत करना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो भी उस वक्त पिता मानने से इनकार कर देते, पिता जैसे। इसी तरह मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा टाइटल जरूर मिलता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो देवात्माएं अनेक हैं, धर्मात्माएं अनेक हैं, महात्माएं अनेक हैं, पुण्यात्माएं अनेक हैं, पापात्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन, है ना? परमात्मा, परमात्माएं नहीं आता है। और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं है। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा भी नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। और भारत में देव आत्माएं भी कितने हैं? कितने हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ देव आत्माएं हैं, परमात्मा एक भी नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। कई बार लोग क्या समझते कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है, उसके टुकड़े टुकड़े होकर के अंश होकर के हम इस संसार में आए और अंत में जाकर के उसी में विलीन होकर के परमात्मा बन जाना है। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि वो तत्व है, तत्व तत्व में मिल जाता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा तत्व नहीं है, शक्ति है। जिसके लिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत शक्ति है, न अग्नि उसको जला सकती है, न पानी उसको भिगो सकती है, न हवा उसको सुखा सकती, न तलवार उसको काट सकती। आत्मा शाश्वत शक्ति है, अजर अमर अविनाशी, अविनाशी, जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो वो मिलेगी कैसे? अगर मिल गई, सागर में बुदबुदा जब मिल जाता है तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहता है। तो आत्मा का अस्तित्व का कभी विनाश नहीं होता है, शाश्वत शक्ति है। तो कई बार कई लोग क्या कहते हैं, जैसे पुत्र पिता का अंश है, ऐसे हम सभी भी परमात्मा के अंश है। पुत्र पिता का अंश हो सकता है ये शरीर 5 तत्वों का ये अंश हो सकता है, लेकिन आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। इसलिए ये कंपैरिजन ही गलत है। तत्व और शक्ति का कंपैरिजन कहां? एक तत्व है, एक शक्ति है, और शक्ति के लिए तो विज्ञान में भी यही कहा जाता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, न उसका क्रिएशन है न उसका विनाश है। तो एग्जाम्पल दो तो बराबर का दो ना, तत्व और शक्ति का एग्जाम्पल कहां मैच होता है बताओ। लेकिन आज दिन तक किसी ने हमें समझाया ही नहीं सही में, और इसीलिए यही कहा सागर से बुदबुदा निकला, सागर में समा गए, हम भी परमात्मा से निकले, परमात्मा में विलीन हुए। मान लिया, कभी किसी ने प्रश्न किया कि भाई ये तत्व का शक्ति का एग्जाम्पल कहां मैच होता है, कुछ मैच हो ऐसी तो बात करो। हाँ, पढ़े लिखे होने के बावजूद नहीं कर पाते हैं। हाँ, जो कहा सतवचन महाराज, जो कहा सतवचन महाराज करते गए, हम कभी प्रश्न ही नहीं किया। अज्ञानी थे, विज्ञान की बुद्धि इतनी दी है भगवान ने, सोचे तो सही हम। तो क्लियर हो गई ये बात, सत्य क्या है। आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है, संतान है कहना सत्य। आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, आप लोग कह रहे हैं मुझे। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है। वंश है, अंश नहीं है हम उसकी संतान अवश्य है, वंश है अंश नहीं है। क्लियर हो गई बात सबको, आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, अब ब्रह्म क्या चीज है, पांच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व जिसको कहा ब्रह्म महातत्व, जिसको अनेक धर्मों में अनेक नामों से जाना गया, किसी ने उसको सचखंड कहा, किसी ने रूहानी दुनिया कहा, जहां आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। इसीलिए गीता के अंदर भगवान ने कहा मेरा धाम परम धाम है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी पहुंच नहीं सकती है, वह दिव्य लोक मेरा लोक है, जहां मैं विराजमान हूं। गीता में कहां कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं, मेरा धाम परम धाम कहा, जहां आत्माएं भी रहती है, जैसे आसमान में सितारे रहते हैं, इसी तरह परम धाम में हर आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है, और उसी अस्तित्व में वहां रहते हैं एक उल्टे वृक्ष के रूप में। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा 15वें अध्याय में, ऊर्ध्व मूल, जिसका मूल ऊपर और सारा वृक्ष नीचे, तो आत्माएं सारे उस वृक्ष के सितारे की तरह है ना, ऊर्ध्व मूल। अज्ञान तक के कारण हम दो दो बातें करते आए, एक तरफ कहा ब्रह्म ही ईश्वर है, तो दूसरी ओर कहा पार ब्रह्म परमेश्वर, पार जो पांच तत्वों की दुनिया से पार ब्रह्म में निवास करने वाला ईश्वर। अब बताइए आपका विवेक किसको सत्य मानता है, ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है, क्या कहेंगे। पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य, राइट, क्लियर, आगे बढ़े। चौथी बात, कहते हैं कण कण में भगवान है, सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। सचमुच क्या सब में ईश्वर है, कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है। आपका विवेक इस बात को मानता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है, मानेगा हाँ? क्या कहेंगे। आज अगर कोई व्यक्ति को कोई कह देता है अरे ये व्यक्ति तो जानवर जैसा है, तो भी उसको इंसल्ट महसूस होती है, झगड़े हो जाते उस एक वाक्य के ऊपर। और ईश्वर को हम कहे वो कूड़े कचरे गंद गटर सब में भगवान है, क्या ये भगवान का अपमान नहीं है, अपमान है या नहीं है? है। तब मनुष्य क्या कहता है, नहीं हर प्राणी में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहां तक सत्य है, अगर हर प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है और एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? हाँ, आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? इतनी शक्ति नहीं है? आज घर में बच्चे होते हैं, बच्चे किसी बात को लेकर अगर आपस में झगड़ा करने लग पड़े, मारपीट करने लग जाए, माँ बाप सामने बैठे हैं तो देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे, क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। एक शारीरिक माँ पिता भी बच्चों को आपस में लड़ते नहीं देख सकता है, तो वो तो परमात्मा है, दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर वो हर एक के अंदर अगर बैठा हो और आत्मा को कुछ कहे ही नहीं तो बैठने का मतलब क्या है फिर? देखो, कोई हमें कोई बात पूछता है या बताता है, हमें मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते ना। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने? कहा? अनजानेपन में भी मुख से यही निकला, ऊपर वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है? गीता के अंदर चौथे अध्याय में भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, भावार्थ के जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने। अगर परमात्मा यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? अगर परमात्मा यही है और उसने जो वायदा दिया है कि अधर्म के समय पर मैं आऊंगा तो कौन आएगा? कौन है और कौन आएगा और उसके होते इतना अधर्म कैसे? कई सवाल खड़े हो जाते। आज देखो, प्रकृति के अंदर भी ये गुण है कि अपने गुण को ट्रांसफर कर सकता है। अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो लोहा भी अग्नि के संग में एकदम लाल और गर्म हो जाता है, संग का रंग चढ़ जाता है। आज मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहे तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी लग जाता है। वो कहानी याद आती कि एक बार एक शिकारी दो तोता पकड़ कर ले आया, बाजार में बेचने बैठा तो एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े दिन में देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था वो सुबह सुबह राम राम बोल रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। हाँ? परमात्मा गुणों में अनंत, वो अगर हमारे बाजू में बैठा है और उसका कोई गुणों का संग का रंग ही हमें न चढ़े, ऐसा हो सकता है? लेकिन तब फिर बात आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही आती है। क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है। फिर सही क्या है? हो सकता है कि शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, यह तो हो सकता है। शास्त्र गलत नहीं है लेकिन हमने शास्त्र का भाव नहीं समझा, ये तो हो सकता है ना। शास्त्र किसने लिखे? किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखे? अनुभूति के बेसिस पर, अनुभव के आधार पर लिखा। कहा जाता है कि उस समय के जो ऋषि मुनि थे बड़े सिद्ध थे, और जब वो तपस्या में बैठते थे, समाधि में बैठते थे, तो कभी कभी समय के अंतराल से गुजरते थे, और जब वो कलिकाल को देखते थे कि घोर पाप कर्म का युग है, मनुष्य को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है। ईश्वर हर जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे कि भगवान मुझे देख रहा है तो वो पाप कर्म न करे। इस भाव से लिखा गया था। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय मां को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं दरवाजा से बाहर ना चला जाए, रास्ते पर ना निकल जाए। तो मां क्या करती है, उसको दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक गाय या कुत्ता दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना, तो कुत्ता उठा के ले जाएगा। मां भी जानती है कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि उसके लिए बच्चे की सुरक्षा प्रथम है। ये नहीं कह सकते कि उसने झूठ क्यों बोला, बराबर। वो बच्चा जब घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, कोई कुत्ते को या गाय को देखता है तो क्या करेगा, वापस अंदर आ जाता और खुश होता है। ये व्यक्त करता है कि आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूं, मेरी चिंता नहीं करो, ये कहना चाहता है। लेकिन वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी मां पर कि मेरी मां भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या, और हंसते हुए निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं लेके आया, वो क्या मुझे ले जाएगा, है ना। समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन उसी बात को उसने सत्य मान लिया था और नहीं जाता था बाहर। ठीक इसी तरह ऋषि मुनियों ने भी जब ये बात लिखी शास्त्र में, तो कली काल जब प्रारंभ हुआ तो मनुष्य भी पाप करने से डरता था। अगर कोई उसको प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो क्या कहता था, क्या कहता था, बाल बच्चे वाला। कली काल जब आरंभ हुआ तो मनुष्य भी पाप करने से डरता था। कोई अगर उसको प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो क्या कह देता था, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसीलिए कोई जब उसको सावधान भी करता है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। वो डर भी नहीं रहा कि जिस भावना से ऋषि मुनियों ने ये बात शास्त्र में लिखी थी कि मनुष्य पाप कर्म कम करे, वो पाप कर्म भी करता जाता है और वो बात भी बोलता रहता है ना। तो इसीलिए सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं, कि ये माइक में भी परमात्मा इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा है। कई लोग हमसे बहस करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हम उनको बात पूछते हैं, आप मानते, कहते हैं हाँ हम मानते हैं ना, ईश्वर सर्वव्यापी कण कण में है। तो फिर हम उनको यही बात कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा, कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा। जो ये बात मानता हो कि भगवान मुझे देख रहा है, उससे कभी कोई गलत काम होगा। जब ये बात कहते हैं तो क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ी पाप तो होता ही है ना। जब आपको मानना नहीं है तो भाई एडवोकेट क्यों ये प्रचार, या तो मानो, पाप न करो, उसके बाद कहो कि हां कण कण में भगवान है, तब तो हम भी माने। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, कोई प्रश्न है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, ये एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। पांचवी बात, जब कहते हैं निराकार है, ना नाम है ना रूप है ना आकार है। अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक चित्रकार को चित्र निकालना और चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही, और शांत प्रकृति दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं कि जैसा हवा चल ही नहीं रही। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना तो कोई इस संसार में चीज ही नहीं है। तो स्वयं परमात्मा नाम रूप आकार बिना कैसे हो सकता है? उसका भी अपना नाम रूप आकार होगा, तो वो कौन सा है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश पुंज। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योति जलाते हैं। अगर आत्मा ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता कैसे होना चाहिए? ज्योति स्वरूप होना चाहिए। अब उसके साथ वो पांचों बातें लगती है या नहीं लगती है? तो हिंदू धर्म में जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, ज्योतिर्लिंगम, लिंग माना आकृति, ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसीलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिस पर मनुष्य जाकर अपनी भावनाओं को अर्पित करता है, और नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले। और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम है, जो आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। और हर मंदिर के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। शिव माना सदा कल्याण करने वाले, शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति। और सारे मंदिरों के नाम भी नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सर्व का नाथ और ईश्वर। देवों की पूजा स्टेट वाइज हो गई भारत में। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय या मुर्गन की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, वेस्ट में जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। इसीलिए शिव का मंदिर जब बनाते हैं, भक्ति में भी देखो कितना एक्यूरेट यादगार है कि शिव का मंदिर जब बनाते हैं और शिवलिंग की जब प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो लिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। कहां से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है, गुंबज नहीं लगाया जाता है, ऊपर से शिवलिंग को उतारा जाता है और तब उसकी स्थापना होती है। कि परमात्मा एक ही है जो इस संसार में अवतरित होते हैं, वो किसी मां के गर्भ से इस संसार में नहीं आते, इसीलिए द्वार से नहीं लाते, ऊपर से उतारा जाता है, अवतरित है। और इसीलिए उनको कहा देवों का भी देव महादेव। भारत में हर गांव में शिव का मंदिर न हो, महादेव का, भोलेनाथ का मंदिर न हो, ऐसा नहीं होता है। बाकी कोई देवी देवता का है नहीं है चलता है, लेकिन महादेव का मंदिर जरूर मिलेगा, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। देवियों को कहा जाता है असुर संहारनी शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां है। और देवों ने भी उसकी पूजा की, रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव भक्त था, है ना? इसी तरह वृंदावन चले जाओ, गोपेश्वर मंदिर मिलेगा, जहां दिखाते बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर के शिव की पूजा की थी। जो गोपों का भी ईश्वर है, श्री कृष्ण का भी ईश्वर है, तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आइडेंटिटी ही अलग है। एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष। जहां दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ और शंकर के लिए कहा तब जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता है। नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, ऑक्यूपेशन अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? जब कोई भी मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता, ओम नमः शंकराय कहा? अगर एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहते हैं, एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? शंकर को पूरा फैमिली में दिखाया है, माँ पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिक है, पूरा हम पत्नी है, दो बच्चे हैं, और ध्यान मुद्रा में दिखाते, किसका ध्यान करते हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कैलाश पर्वत पर जाकर जिसने ध्यान किया, कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, और वहां शंकर ने भी बैठकर किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया, है ना? तो इसीलिए ज्योतिर्लिंगम, ये सभी आत्माओं का पिता, ये मान्यता भारत में है। भारत से बाहर चलते हैं, इस्लाम धर्म में जहां मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु मक्का जब हज करने जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, जिसको कहते हैं संगे अश्वद, काबा का पवित्र पत्थर। और ये पवित्र पत्थर के पीछे एक मान्यता है, कहा जाता है कि मक्का में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, सबके अपने अपने इष्ट थे जिसको वो अल्लाह मानते थे, परंतु मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा मतभेद हुआ, उसको मक्का से मदीना भेज दिया कि वहां बैठ के ये प्रचार करो। उसने वहां पर ये प्रचार चालू रखा, अल्लाह एक है। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए, जब काफी मात्रा में लोग हो गए तो पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस समय कहा जाता एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पत्थर गिरा था मक्का में, और तब उसकी स्थापना की गई मक्का में, और तब से लेकर के ये मान्यता रही कि इस पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब जीवन सफल होता है। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वहां जाने के बाद क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है और 7 बार उसकी परिक्रमा करता है। सात बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कोई मस्जिद में नहीं होती है। और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर का मतलब लाइट, प्रकाश, तेज। ज्योति का मतलब तेज, प्रकाश, लाइट। जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए, यहूदियों में कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देख करके मोसेस ने कहा ये हो वाह, यानी द सुप्रीम लाइट। इसीलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा ही यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं उसका बेटा हूं। और हर क्रिश्चियन भी ये मानता है कि जीसस उसका बेटा है, भगवान का बेटा है, इज द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए जब क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया, उस वक्त अपनी अंतिम प्रार्थना में भी उसने भगवान से यही कहा है, प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन चले जाओ रोम में, जहां क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल, कितना सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। वाहे गुरु जो कहा, किसको कहा? उस निराकार को कहा जो सच्चा पातशाह है, जिसकी कोई आकृति नहीं है मनुष्य सदृश, उस निराकार को सच्चा पातशाह माना। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और सभी तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो भी ध्यान मुद्रा में है, किसका ध्यान कर रहे हैं? तब कहते सिद्ध शिलापति। सिद्ध शिलापति माना जो सर्वश्रेष्ठ निराकार परमात्मा है, उसका ध्यान कर रहे। आज भी दिवाली के दिन जब महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाया जाता है, उस समय जैनी लोग अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया, वो गति हमें भी प्राप्त हो। ये शिव धाम कौन सा है? शिव कौन है? और महावीर स्वामी ने भी जिसका ध्यान किया और उस गति को प्राप्त किया, स्पष्ट है। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी कोई मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, वो भी ध्यान मुद्रा में है, किसका ध्यान कर रहे हैं? आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते चिंकुन सिकी। चिंकुन सिकी का मतलब है शांति का दाता, कि जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं हमारा मन रिलैक्स हो जाता है। आज का विज्ञान, साइंटिस्ट लोग इस आकृति के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। शिव की आकृति जो है उसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है। और ये रिसर्च का रिजल्ट निकला कि यही आकृति परमात्मा के लिए क्यों रखी गई मंदिरों में भी, शिवलिंग ही क्यों रखा गया, और कोई आकृति नहीं दी, यही आकृति क्यों दी? तो विज्ञान ने यह ढूंढा कि सबसे ऊर्जावान आकृति है तो यही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में शिवलिंग के ऊपर एक कलशी होती है जहां से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, कि अगर सबसे ऊर्जावान ये आकृति है तो उसको शीतल रखना आवश्यक है। इसीलिए उसको शीतल रखने के लिए पहले के जमाने में स्त्रियों को, नारियों को शिव की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी भारत में। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में ये माना जाता था अगर सबसे ऊर्जावान यही आकृति है तो नारी या स्त्री इतनी श्रद्धा से भक्ति करेगी और सारी ऊर्जा खींच लेगी तो पुरुषों का क्या होगा। इसीलिए स्त्रियों को अनुमति नहीं दी जाती थी, और शायद इसीलिए आज सारे विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमारीज लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट उस परमात्मा पर ध्यान एकाग्र करके उस ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया है। इसीलिए इतनी संस्था दिन प्रतिदिन, नहीं तो संस्थापक के जाने के बाद कभी भी संस्था वृद्धि को नहीं पाती, फूट पड़ जाती है। एक ब्रह्मा कुमारीज ही सारे विश्व के अंदर ऐसी संस्था है कि संस्थापक के जाने के बाद भी वो उतनी ही एकता के साथ आगे बढ़ती जा रही है। और आगे जाए पारसी धर्म में, कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे, अखंड ज्योति स्वरूप। उसके मंदिर को भी कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत जलती ही रहती है। तो पहली कसौटी सर्व धर्म मान्य कौन है? एक ही तो है, जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, किसी ने निराकार कहा, अखंड ज्योति कहा। नाम भले अलग अलग दिए, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा। आज कोई आपको चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, ताऊजी कहे, लेकिन स्वरूप तो एक ही रहेगा या हर बार बदली हो जाएगा? ऐसे ईश्वर को किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, मालिक कहा, साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। लेकिन ये तो वही हो गया, जो कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था कि मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ देना जरूर है, कुछ ना कुछ देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, ये राजा लाता कहां से है, उस स्रोत को अगर मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ना पड़े। तो एक दिन वो सुबह सुबह में पहुंच गया कि जरूर राजा सुबह सुबह ही प्राप्त करता होगा, फिर सारा दिन लोगों को बांटता है। 6 बजे में पहुंच गया, द्वारपाल को पूछा, ए द्वारपाल तुम मुझे ये बता इस वक्त राजा कहाँ होंगे और क्या करते होंगे? द्वारपाल ने कहा, राजा तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। उसने सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा। कहा मैं जा सकता हूँ? कहा क्यों नहीं, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मैं पीछे ही बैठूंगा। पीछे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी झोली भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने सुना उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है? कहा आज पता चला ये राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं, तो हम भी डायरेक्ट भगवान से ना मांगे। चलते चलते भिखारी का विचार चला कि राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया हनुमान जी की झोली किसने भरी? कहा वो तो श्री राम भक्त था। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा उसने तो महादेव की पूजा की थी। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब महादेव के बहुत सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा, श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा, हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा, राजा के भी इतने सारे लोगों को देना पड़ता, एक हिस्सा मेरे पास आया, तो भिखारी सोच में पड़ गया, वाया वाया में सब कम हो रहा है, क्यों ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ ही। मेरा भाव तो समझ ही गए होंगे आप, हा? कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटक गए हैं? क्या करेंगे माताएं, क्या करेगी? और डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? भोलेनाथ है, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो पहली कसौटी सर्व धर्म मान्य है, दूसरा सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, उसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है। सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम अथॉरिटी, जो सभी चक्रों से पार है, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, इसीलिए अजन्मा और अमरनाथ उसको ही कहा गया, जो मरता नहीं है कभी, जिसको काल कभी नहीं खा सकता, महाकालेश्वर, जो अकर्ता भोक्ता है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, जो सभी चक्र से परे है लेकिन पर होते हुए भी सर्वज्ञ है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला, और सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। फिर तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला त्रिनेत्री, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम का, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहा है ना। और इसीलिए ये तीन देवताओं के भी जन्म नहीं दिखाते हैं, उत्पत्ति दिखाते हैं, शिव का अवतरण दिखाते हैं, शिव अवतरित हुए इस संसार में, किसी मां के गर्भ से नहीं आए। और इसीलिए गीता के सातवें अध्याय में कहा, मैं अति साधारण रूप में पर काया प्रवेश करता हूं, जिस कारण मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई मैं भी कोई विरला, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचानकर मेरी शरण को ग्रहण कर सकते। सभी नहीं जान सकते, अगर भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ जाए तो कौन नहीं पहचानेगा, भीड़ लग जाएगी दर्शन की, है ना। इसीलिए अति साधारण रूप में अवतरित होते हैं, और ये तीनों को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए ये तीनों का जन्म नहीं दिखाया गया, उनके भी माँ बाप नहीं दिखाए हैं, तीनों की उत्पत्ति दिखाई गई है। उनको अवतरित नहीं कहेंगे, उनकी उत्पत्ति है। और उनकी उत्पत्ति कहां से हुई तो कहा जाता प्रकाश से उनकी उत्पत्ति हुई, प्रकाश से, लाइट से उनकी उत्पत्ति हुई तीनों देवताओं की। इसलिए तीनों देवताओं का गायन भी हर धर्म में मिलेगा, हिंदू धर्म में जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, जो सृजन पालना और महाविनाश कराते हैं, फिर इस्लाम धर्म में जिसको कहा जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, जिब्राइल माना जो सबक देने वाला, ज्ञान देने वाला, मिकाइल माना जो रोजी रोटी देता है यानी पालना करने वाला, और इसराफिल माना जो कयामत लाने वाला। तो क्रिश्चियन धर्म में कहा जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, थ्री होली एंजल्स या थ्री होली गोस्ट कहते हैं उसको। गॉड फादर माना फादर ऑफ जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, है ना, उन तीनों के पिता है वो परमात्मा। इसीलिए ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, और शिव के लिए कहते शिव परमात्माए नमः। शिव देवाय नमः नहीं कहते, शिव परमात्माए नमः, जो पिता है तीनों के। तो गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में इन तीनों की महिमा गाई, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, है ना, ये तीनों के लिए। हर धर्म में ये तीन देवताओं की भी मान्यता मिलेगी। लेकिन यहां भारतवासी को एक सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि यहां जो ब्रह्मा दिखाया गया और भक्ति में जो ब्रह्मा का चित्र हमने देखा, इसको ब्रह्मा क्यों कहते? भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा, तो ब्रह्मा को दिखाते हैं एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था दिखाते हैं, है ना। बाकी देवी देवताओं को दाढ़ी मुछ नहीं दिखाते, मनुष्य को दिखाते हैं और असुरों को बड़ी बड़ी मूछें दिखाते हैं, देवताओं को कभी नहीं, सिर्फ ब्रह्मा को दिखाते। ब्रह्मा को कमल आसनधारी दिखाया, कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है या किसी बात का प्रतीक है? किसी बात का प्रतीक है। आज की दुनिया में कोई बच्चा दो मुंह वाला पैदा होता है तो क्या कहते हैं? एबनॉर्मल चाइल्ड। ब्रह्मा को चार मुख दिखा दिया फिर भी एबनॉर्मल नहीं कहा, यानी ये भी किसी बात का प्रतीक है। तो किस बात का प्रतीक है? तो कहा जब परमात्मा इस संसार में अवतरित हुए अति साधारण रूप में, उस समय कौन सा समय चल रहा था? तो देवों की सृष्टि नहीं थी, असुरों की सृष्टि भी नहीं थी, मनुष्य सृष्टि थी। तो मनुष्य सृष्टि को कैसे दिखाए? इसलिए ब्रह्मा को दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था, क्योंकि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर परकाया प्रवेश करते हैं, तो मनुष्य तन कैसे दिखाए? तो दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था यानी अनुभवी तन को अपना बनाया, जिसमें अवतरण किया। और सबसे पहले क्या किया? तो उस समय संसार कीचड़ जैसा था, उस कीचड़ में कमल को खिलाया, यानी उसका जीवन का शुद्धिकरण किया। जीवन का शुद्धिकरण कैसे किया? तो ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दिखाए। अब ब्रह्मा को शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया भगवान ने, और उस ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से उसके जीवन का शुद्धिकरण किया। और किसके लिए ये ज्ञान था? खाली हिंदू धर्म वालों के लिए नहीं, सारे संसार की आत्माओं के लिए। तो सारा संसार कैसे दिखाए? तो चार दिशा में चार मुख दिखा दिया कि वो ज्ञान जो प्रवाहित हुआ संसार की चारों दिशा में फैला, यानी सारी मानव जाति के लिए वो ज्ञान था। और किसका ज्ञान था? तो पार ब्रह्म में रहने वाले ईश्वर का। इसलिए उसने इसमें अवतरण किया, इसलिए उसको कहा ब्रह्मा। पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर ने इसको अपना बनाया। जो कार्य परमात्मा इस समय, अधर्म का समय है तो इस समय आकर कर रहे हैं, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना का कार्य, तो ये ब्रह्मा वो ब्रह्मा एक ही है। और पांचवी कसौटी, सर्व गुणों में अनंत। तो ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की व्याख्या क्या है? अनंत, इन्फिनेट, डायमेंशनलेस, मेजरमेंटलेस, इन्फिनेट। बिंदु के बिना एक अक्षर भी नहीं लिख सकते, बिंदु के बिना एक लकीर भी नहीं खींचा जाता है। इसीलिए परमात्मा की महिमा है, बिंदु में सिंधु है, गुणों में अनंत है, रूप में बिंदु है,
और विज्ञान में सबसे सूक्ष्माणु है। और गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं, मुझे अपना कोई शरीर नहीं है, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म। ये गीता के महावाक्य है, परमात्मा का अपना परिचय है। तो ये था परमात्मा का पूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं ना, तो 5 बातें पूछी जाती है, आपका नाम क्या है, फिर फोटो चाहिए आइडेंटिटी के लिए, वही है या दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन चाहिए, चौथा एड्रेस चाहिए, और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन चाहिए। 5 बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये 5 बातें देखी, जिसका नाम है सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो, सिद्ध शिलापति, चिंकुन सिकी, जो भी कहो, संगीय अश्वद, उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश नूर लाइट अखंड ज्योति निराकार स्वरूप। उसके क्वालिफिकेशन 5 बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। और उसका निवास स्थान एड्रेस है पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, परम धाम का वासी है, मोक्ष धाम रूहानी दुनिया का निवासी है, सचखंड का निवासी है। और उसका कर्तव्य है, ऑक्यूपेशन है, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म का नाश, सत धर्म की पुनर्स्थापना कराने वाला कौन, परमात्मा, जो करण करावन हार है, कराता किससे है, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि आखिर भी ये सभी भगवानों का हेड कौन है, तो अब तो बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? हाँ जी बोलिए। शंकर के साथ दिखाए, यही तो बताया ना, शिव के साथ नहीं दिखाते, लिंग के बाजू में नहीं दिखाते, शंकर के साथ दिखाते। वही तो गड़बड़ कर दी ना मनुष्य ने, शंकर पार्वती है, शिव पार्वती नहीं है, लेकिन शिव शंकर को एक समझ लेने कारण इसकी पत्नी को इसके साथ जोड़ दिया। अब आप बताओ, दूसरे की पत्नी को दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो कितना बड़ा अधर्म माना जाएगा? तभी तो दुनिया में अधर्म बड़ा है। गड़बड़ कितनी किया हमने, कोई कम गड़बड़ किया? कितनी गड़बड़ कर दी, किसकी पत्नी को कहां जोड़ दिया? अब बताओ, ये अधर्म नहीं तो क्या है? अधर्म है ना, इसलिए शंकर की पत्नी है, शिव की पत्नी नहीं है, समझा? हाँ जी बोलिए। हाँ, कारण क्या है कि जो शक्तियां हैं उसको आदि शक्तियां कहते हैं। आदि शक्तियां कहते हैं ना, शिव की उत्पन्न की हुई सबसे पहली शक्तियां होती है, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। इसलिए ऐसा कहा गया, जो भक्ति में प्रार्थना में गाते हैं वो भी इसीलिए गाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उत्पत्ति जो हुई वो ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं हुई, सबसे पहले आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई, शक्ति की उत्पत्ति, इसीलिए। फिर असुरों का संहार किया उन शक्तियों ने, इसलिए सारी शक्तियों को कुंवारी दिखाते हैं, है ना, अंबा दुर्गा ये सब कुंवारी है, शिव शक्तियां हैं। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। हाँ जी हाँ जी परमात्मा को धन्यवाद, ज्ञान उसका है, हम खाली निमित्त बने उसका परिचय देने के लिए, बाकी ज्ञान तो उसने ही सुनाया है। हाँ जी जी हाँ वो तो कैसे भी फिर नियम कानून बना दिए पंडितों ने, ऐसे नहीं ऐसे रखो, ताकि उनका महत्व रहना चाहिए ना। मनुष्य की गलती नहीं निकालेंगे तो उनका महत्व कहाँ से रहेगा, है ना। गलती तो निकालना चाहिए तभी तो रहेगा। आप पंडित जी को पूछो, हर बात में पूछो, नहीं तो गलती हो जाएंगी। तो पंडितों का महत्व तो रहना चाहिए ना थोड़ा तो। बाकी सीधा चढ़ाओ उल्टा चढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, गायन है ये तीन मूर्तियों का। ठीक है, तो अब तो क्लियर हुआ आपको, अब तो क्लियर हुआ कि अब कोई प्रश्न रहा? हाँ हाँ जी। नहीं क्यों नहीं है, कर्मों का फल तो है ही ना, हरेक का कर्मों का सिद्धांत तो अपने अपने, वो तो कर्मों की गुह्य गति लेसन आएगा, उसमें पूरा कर्मों का हिसाब किताब सारा बताया जाएगा। ईश्वर क्यों नहीं देख रहा है? देख रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई वो इंटरफियर करे हमारे कर्मों में, वो कायदा नहीं है। लेकिन उसके लिए उसको नीचे रहने की जरूरत नहीं, ऊपर से भी वो देख सकता है, वैसे उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत इस तरह से उसने बनाया हुआ है संसार में कि जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाए। ये कर्म सिद्धांत उसने संसार में कर दिया है, इसलिए उसको जानने की जरूरत नहीं, नहीं तो वो भी दुखी हो जाएगा मनुष्य के कर्म को देख देख करके, है ना। तो सुख दुख से ऊपर है। अच्छा, जिसका ये प्रश्न है, शिव पार्वती का बंधन, अभी हमारा जो मैंने पहले ही कहा ये शंकर पार्वती की बात है, शिव पार्वती की बात ही नहीं है, इसीलिए ये सवाल का जवाब देना मैं यथार्थ नहीं समझती हूँ।